ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भावुक गर्ग। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस के स्वर्ण जयंती समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने निमहांस द्वारा भारत में मेंटल हेल्थ के प्रोत्साहन पर किए गए प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर भावुक गर्ग एसोसिएट प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग कार्यक्रम में।
धन्यवाद
डॉक्टर गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे आज ये मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो कितना बड़ा है हमारे देश में, और अगर हम अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने।
मेंटल हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा इशू है, मैं इसको एक बिग की जगह कहता हूँ, ह्यूज इशू है। और फिगर्स की अगर हम जैसे बात करते हैं, देश में एक हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, निमहांस ने ही किया था इनफैक्ट वो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में। उसमें ये पाया गया था कि हर 10 में से एक भारतीय डिप्रेशन से ग्रसित है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। सिमिलरली अगर हम और मानसिक बीमारियों की बात करें, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, बायपोलर डिसऑर्डर या गंभीर मानसिक बीमारियां जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, इनकी भी जो प्रेवेलेंस यानी कि जो सोसाइटी में फिगर्स हैं वो काफी हाई हैं अभी, बोथ रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज, दोनों ही रूरल एरियाज में भी ज्यादा है और अर्बन एरियाज में भी ये जो मानसिक समस्याएं हैं काफी ज्यादा रहती हैं। फिगर्स जो इंडिया में है, जो भारतीय फिगर्स कहती हैं, वो काफी हद तक ग्लोबल फिगर्स यानी कि वर्ल्ड फिगर्स से भी काफी मैच करती हैं। पूरे विश्व में भी मानसिक परेशानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सभी देश इसके प्रति अब काफी जागरूक हैं और इसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में भी मानसिक समस्याएं एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई हैं, चुनौती बन गई हैं, और इसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं कि इस चुनौती से हम कैसे लड़ें। पर जैसा आपने पूछा कि इसके चुनौतियां और क्या क्या हैं जिसकी वजह से अभी परेशानी हो रही है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जो मानसिक परेशानियों के प्रति एक स्टिग्मा है, यानी कि लोगों में एक धारणा है कि अगर किसी को मानसिक परेशानी है तो वो पागलपन के समान है, पर ऐसा नहीं है। आज के समय में मानसिक बीमारियों का इतना अच्छा इलाज उपलब्ध है कि सभी मानसिक बीमारियां अब ठीक हो सकती हैं, ट्रीटेबल हैं, और इंसान एक अपना सामान्य जीवन जी सकता है। एक और बड़ी चुनौती है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि लोगों को मानसिक परेशानियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है, वहां तक वो रीच नहीं कर पाते हैं। या तो हॉस्पिटल्स कम है, या देश में जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं जिसमें हम साइकेट्रिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स की बात करते हैं, उनके नंबर्स काफी कम हैं। पर इस चुनौती को भी कम करने के लिए नंबर्स बढ़ाने की काफी कोशिश करी जा रही है, सीट्स बढ़ाई जा रही है साइकेट्रिस्ट की भी और साइकोलॉजिस्ट्स की भी, और अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि टेलीमानस एक सरकार ने लॉन्च किया है जिससे कि फोन के जरिए और ऐप के जरिए ही मानसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इवन बहुत दूर दराज के इलाकों में भी। एक और बहुत बड़ी चुनौती जो रहती है कि स्टिग्मा के साथ साथ लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, या मानसिक परेशानी के प्रति जागरूकता काफी कम है कि क्या ये लक्षण एक मानसिक बीमारी है या नहीं है, अगर है तो इसके लिए क्या इलाज लेना चाहिए, कहाँ इलाज लेना चाहिए। तो वो जागरूकता या अवेयरनेस की जो कमी है वो भी मानसिक परेशानी को खत्म करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
So, किस तरह के प्रयास कर रहे हैं जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं या जो पूरा इकोसिस्टम है, ताकि ये स्टिग्मा जो है वो दूर हो, लोग अवेयर हो, एक्सेप्ट करें कि उन्हें कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए ट्रीटमेंट के लिए।
सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें और प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर्स में काफी इसके प्रति प्रयास करे जा रहे हैं। हमारे देश में एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है जो कि 1982 से चल रहा है, और उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी है जिसके अंदर इस समय 67 डिस्ट्रिक्ट्स अप्रूव हो गई हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत मानसिक रोग के लिए जो सुविधाएं हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में, देश की हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराई जाती हैं, जहां पे मेडिकल ऑफिसर या साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और एक पूरी टीम उपलब्ध होती है जो कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन या जागरूकता बढ़ाने का भी काम करते हैं। वो आउटरीच एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग एरियाज में जाके कैंप्स करते हैं या पोस्टर्स या अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं जिससे कि जागरूकता बढ़ाई जाए। इसी के साथ साथ प्राइवेट साइकेट्रिस्ट या प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट बॉडीज जो हैं, उनकी सोसाइटीज, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, ये लोग भी अपने लेवल पे कुछ कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं जिससे कि जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोग मानसिक परेशानियों को समझें और उनके इलाज के लिए आगे आए। सिमिलरली टेलीमानस, जैसे मैंने बताया, टेलीमानस जैसी सुविधा चीजें भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काफी अच्छा काम कर रही है।
बेंगलुरु के हमारे आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट सुधींद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं।
नमस्कार सबको।
सुधींद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे निमहांस में आज जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन दिया और निमहांस में जो ये फंक्शन हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, इसमें क्या कुछ इसके प्रमुख केंद्र बिंदु रहे?
निमहांस ने अपने 50 साल अपने पूरे किए हैं और इस 50 साल में उनको मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेस के बारे में लोगों तक अपने जो सेवाएं हैं उनको पहुंचाना और लोगों को महसूस कराना कि आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, ये जो कोशिश निमहांस ने की है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। जैसे देखिए हमारे यहाँ निमहांस पे क्या बोलते थे कि पागल खाना आ गया, तो पब्लिक में अगर आप ओपनली ऐसे बोलेंगे पागल खाना आ गया तो कोई भी अस्पताल जाना तो वो पसंद नहीं करेंगे। अभी इतने लोग आ रहे हैं कि उतना फुटफॉल 5-fold 10-fold बढ़ गया है। उन्होंने अभी तक 8,000 से ज्यादा मतलब एवरी ईयर 8,000 न्यूरो सर्जरीज यहाँ होता है और अराउंड 7 लाख पीपल यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अभी मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेस के बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट किया गया है और जो स्टिग्मा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया है उससे अब लोग ओपन आ रहे हैं और खुद निमहांस के जो सेवाएं हैं उसमें उसका लाभ पा रहे हैं।
जी बिल्कुल। और राष्ट्रपति जी ने कहा कि अतीत में कुछ समाजों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था, अब आपको लगता है कि वो पूरा वातावरण चेंज हो रहा है और जो ये प्रॉब्लम है इसको किसी भी और बीमारी की तरह एक्सेप्ट करके उसकी ट्रीटमेंट की तरफ एक पॉजिटिव रवैया अपनाया जा रहा है?
बिल्कुल, पति जी ने ये भी कहा कि निमहांस जो अभी आधुनिक एलोपैथी के जो है ट्रीटमेंट उसके साथ योगा और आयुर्वेदा को भी इंटीग्रेट कर रहा है। योगा के थ्रू वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल एक वार्ड भी बनाया गया है और आयुर्वेदा के रिसर्च में भी निमहांस योगदान दे रहा है।
सुधीन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। डॉक्टर गर्ग आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि ये धीरे धीरे काफी विशाल प्रॉब्लम बनती जा रही है मेंटल हेल्थ की, तो आप बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर क्यों ये जो समस्या है वो उत्पन्न होती है, कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से और कौन से मेजर ऐसी कैटेगरीज हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स की?
अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हम हमेशा कहते हैं कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनके होने के कोई एक कारण नहीं होता, हम पिन पॉइंट करें कि इस वजह से ये मानसिक परेशानी इस इंसान को उत्पन्न हुई। आमतौर पे बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल। उसमें बोला जाता है बायो साइको सोशल मॉडल। बायो साइको सोशल का मैं अगर हिंदी में कोशिश करूं बताने की, बायो मीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि हमारे शरीर के अंदर के फैक्टर्स जैसे होते हैं जिसमें कि हमारे हॉर्मोन्स, एज से जो चेंजेस आते हैं या कुछ जेनेटिक या अनुवांशिक फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, बोला जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। साथ ही होते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि इंसान की किस तरह की उनकी सोच है, कैसे वो समस्याओं से जूझते हैं, कितना उनके अंदर रिजिलियंस है या कितने रेजिस्टेंस है चीजों को झेल पाने का या मैनेज कर पाने का। ये होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और कुछ होते हैं सोशल फैक्टर्स यानी कि हमारे सामाजिक फैक्टर्स। सामाजिक फैक्टर्स में या सामाजिक कारणों में हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरह का हमारा वातावरण है, हमारे काम का वातावरण कैसा है, वर्क प्लेस एनवायरमेंट कैसा है, या हमारे परिवार का वातावरण कैसा है, या हमारे आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, किसी प्रकार का हमारे जीवन में कोई घटना हुई है जैसे कि किसी व्यक्ति को हम लॉस हो, हमारा किसी करीबी रिश्तेदार को हम खो दें, या अगर हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस हो, आर्थिक कोई परेशानी आए, तो इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और नए नए जीवन की परेशानियां बढ़ती जा रही है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है या वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, परिवार हमारे छोटे होते जा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली सेटअप की तरफ जा रहे हैं, उससे भी काफी हद तक मानसिक परेशानियों का हमारे देश में देखा गया है कि बढ़ रही है।
इस बीच हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जुड़ गई हैं जो है डायरेक्टर निमहांस की। डॉक्टर मूर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। डॉक्टर मूर्ति आपसे जानना चाहेंगे, आज निमहांस की स्वर्ण जयंती थी, हमें बताएं कि निमहांस का क्या सिग्निफिकेंस है देश के मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम में?
ये तो पहले मेंटल हॉस्पिटल के रूप में स्थापित हुआ था 1930s में और उसके बाद 1954 में जो पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है मेंटल हेल्थ में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ करके यहाँ स्थापित हुआ। उसके बाद यहाँ जो मेंटल हॉस्पिटल था वो और AIIMH जोड़ के निमहांस बनाया गया 1974 में। उसके बाद हम बने डीम्ड यूनिवर्सिटी 1994 में और 2012 में हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। तो आपको पता होगा कि जैसे हम एक मानसिक अस्पताल से पहले वो जो था, अब तो हमारे पास ये ब्रेन और माइंड दोनों की चीजों में पेशेंट केयर होती है, रिसर्च होता है और काफी ट्रेनिंग होता है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। 1,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स हर साल यहाँ ट्रेन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है और देश के सभी जगह से यहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और न्यूरोसर्जिकल कंडीशंस यहाँ लोग आते हैं, और उसके साथ काफी रिसर्च भी होता है जो कटिंग एज रिसर्च हम बोलते हैं। आज तो माननीय राष्ट्रपति ने 3 बिल्डिंग का इनॉग्रेशन की, एक है साइकाइट्री स्पेशलिटी वार्ड करके जहाँ पे स्किजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, रिहैबिलिटेशन, सुइसाइड प्रिवेंशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट, ये सभी चालू है। और एक सेंट्रलाइज लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट जो है वो हम कर पाएंगे। उसके साथ ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी इनॉग्रेट हुआ, और उसके साथ जो मशीन्स है इमेजिंग के लिए, मतलब ब्रेन को हम कैसे इमेज कर सकते हैं, इसका 3D टेस्ला MRI भी रिलीज हुआ, और एक डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी वो भी रिलीज हुआ। ये सब इक्विपमेंट से हम ब्रेन में क्या होता है वो सब हम देख पाते हैं, और जो माइनर प्रॉब्लम्स है उसको भी हम पहले ही पकड़ पाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मूर्ति। डॉक्टर गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात अभी करी सोशल फैक्टर्स की, सो किस तरह का अभी जो सपोर्ट सिस्टम है भारत में वो कितना इम्पोर्टेंट है? फैमिली का सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट, जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है पेशेंट उसकी बेहतरी के लिए।
अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों से जहाँ पे फैमिली सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और लोग अपना जीवन अलग अलग व्यतीत करते हैं, और हमारे भारत में देखा गया है कि फैमिली सिस्टम एक हमेशा एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ रही है। हम एज साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इसको एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ मानते हैं। परिवार का होना हमारे देश में काफ़ी हमारी मदद करता है इन टर्म्स ऑफ कि वो एक बफर जोन प्रोवाइड करते हैं। परिवार में किसी को परेशानी है, उनको कुछ हद तक इनिशियल हेल्प देना, शुरुआती हेल्प देना, उनको सलाह देना, वो काम परिवार वाले कर पाते हैं। साथ ही साथ उनको अस्पताल ले जाना, ट्रीटमेंट में एंगेज कराना, इलाज को कायम रखना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति खुद नहीं समझ पाते कि हमें मानसिक बीमारी है और मानते नहीं कि हमें मानसिक बीमारी है। ऐसे में हम परिवार का साथ लेते हैं और परिवार की मदद लेते हैं कि आप इनके ट्रीटमेंट में लगाए रखें या एंगेज कराए रखें।
किशोर है या युवा है, उनमें भी हम काफी देख रहे हैं कि स्ट्रेस उनको बहुत परेशान करता है, और कई बार उनमें सुइसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। जैसे कोटा में हमने सुना है कितने जो वहां पर एस्पिरेंट्स हैं वो सुइसाइड करते हैं, तो इस तरह का जो सिचुएशन है उसको आप कैसे देखते हैं? अपना जो मेंटल मजबूती है उसको बढ़ाने के लिए एक आम इंसान या आम युवा क्या कर सकता है?
जो युवाओं में या चिल्ड्रन या एडोलेसेंट्स में जो मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं उसके कई कारण हैं। एक जो कॉम्पिटिटिवनेस हो गई है, एक जो कंपटीशन की स्ट्रीक हो गई है कि मुझे ही आगे आना है, मुझे आगे रहना है, आगे नहीं आए तो वो जीवन का अंत हो गया है, वो एक सोच कहीं ना कहीं आज के युवाओं में मानसिक तनाव काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है। पढ़ाई और खेल या वर्क लाइफ बैलेंस, बड़ों में या बच्चों में स्टडी एंड प्ले बैलेंस, वो चीज़ भी काफ़ी ज़रूरी है कि बैलेंस रखा जाए। बच्चों को हम बचपन से ही सिखाएं कि जीवन में परेशानियों से कैसे जूझना है, उनको रिजिलियंट बनाने की कोशिश करी जाए। तो इन कुछ तरीकों से हम हमारे आने वाले समय में हमारे यूथ को ज़्यादा एम्पावर कर पाएंगे कि वो मानसिक परेशानियों से जूझ सकें।
सो मेंटल हेल्थ के प्रोत्साहन के लिए ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, बल्कि कार्यस्थलों, समुदायों, स्कूल्स, परिवार, सबको एक दूसरे का एम्पावरिंग करना ज़रूरी है। आपको लगता है ये एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है?
बिल्कुल 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 सही कहा आपने। केवल डॉक्टर्स या सरकार के प्रयासों से हम इस बड़ी परेशानी से नहीं निपट पाएंगे। इसमें सबका, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको सबको इन्वॉल्व इकट्ठे होना पड़ेगा। समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सोसाइटी में जो हमारी फैमिलीज हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सभी लोग जब मिलके इस परेशानी से निपटने के तरीके निकालेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इस परेशानी को कम कर पाएंगे और इससे हम ज़्यादा बेहतर रूप से बाहर निकल पाएंगे।
डॉक्टर गर्ग, इस संवेदनशील, प्रेरणात्मक और समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भावुक गर्ग। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।